بالظبط. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. तो हम इस क्लास में अपने हजरत बिरजुल के बारे में नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले दुरूस उमूर खानदारी में हुस्न इंतजाम में से पढ़ा करते हैं। और पिछली क्लास में हमने शुरू तो कर लिया था एक नया उनवान यानी वक्त का सही इस्तेमाल, टाइम मैनेजमेंट। लेकिन फिर हम पीछे की कुछ बाकियात जो हैं वो रह गई थी, तो उनको मुकम्मल करने में पिछली क्लास मुकम्मल हो गई थी। लेकिन बहुत अहम कुछ बातें थी जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछली क्लास में हो गई थी। तो वक्त का इस्तेमाल, सही इस्तेमाल, ये उनवान फिर हम प्रॉपरली बाकायदगी से अभी शुरू, बाकायदा तौर पर अभी शुरू करते हैं। तो इसमें हमारे हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह ने खुतबे में सूरह असर बयान फरमाई, वलअसर, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत वक्त की कसम खाते हैं, जमाने की कसम खाते हैं। और उसके बाद फिर बहुत ही मुख्तसर अल्फाज में इंसानियत को उसकी हकीकत समझा देते हैं और अपने खसारे में से निकलने का बहुत ही सिंपल अल्फाज में स्टेप बाय स्टेप तरीका भी बतला देते हैं। तो हज़रत इसमें फरमाते हैं कि आज के बयान का उन्वान है टाइम मैनेजमेंट, वक्त का इस्तेमाल, कि औरत अपनी जिंदगी में वक्त को कैसे मैनेज करे। जैसे कि आप लोगों को मालूम ही है और जो नए लोग हैं वो भी सुन लें कि ये जो सिलसिले बयानात थे ये खुसूसन खवातीन के लिए किए गए थे। तो खवातीन हजरत के सामने नहीं बैठी हुआ करती थी, बल्कि पर्दे में कहीं दूर किसी इमारत में जमा होती थी, और हजरत जो है वो मस्जिद में बैठ करके मर्दों के मजमे में बयान कर रहे होते थे। लेकिन सबको ही पता होता था कि ये बयान जो है वो खुसूसन खवातीन के लिए, तो वह बयान बेसिकली ब्रॉडकास्ट हुआ किया जा रहा होता था वहां पर जहां खवातीन बैठी होती थी। तो इस वजह से औरत के औरत अपनी जिंदगी में वक्त को कैसे मैनेज करे, इस वजह से ऐसे फरमाया। तो मर्द की जिंदगी और औरत की जिंदगी बुनियादी तौर पर तो दोनों सेम हैं, लेकिन तफसीलात में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दोनों के फर्क रखा है। तो जो डेली मामूलात मर्द की जिंदगी के होते हैं वो काफी मुख्तलिफ होते हैं, काफी चीजों में मुख्तलिफ होते हैं, और जो डेली मामूलात औरत की जिंदगी में होते हैं वो बहुत सी चीजों में मर्दों से मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है, या होने चाहिए, क्योंकि तो जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा कि भाई ये मामूलात डिफरेंट रहें। जाहिर है अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो जो जिद है, जो दुश्मन है अल्लाह का भी और इंसान का भी, तो वो अल्लाह ताला की चाहत के खिलाफ करने की कोशिश करता है। तो उसकी चाहत और उसकी कोशिश यही होती है कि औरत और मर्द के दरमियान जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फर्क रखा है ये फर्क खत्म हो जाए। ठीक है, तो जो काम मर्द दिन भर में करता है वही काम जो है वो औरत भी दिन भर में करनी शुरू हो जाए। ठीक है, जिस तरह से मर्द लिबास पहनता है तो उसी तरीके से औरत भी लिबास पहननी शुरू हो जाए। ठीक है, जिस तरह से मर्द की कैफियत होती हैं उसी तरह से औरत की भी कैफियत बन जाए, या इसके दूसरी साइड पे भी जिस तरह औरत की कैफियत होती हैं उसी तरीके से मर्द की भी कैफियत बन जाए। ठीक है, यानी मर्द भी उसी तरह का जज्बाती हो जाए जैसे कि अल्लाह ताला ने औरत को जज्बात का पैकर बनाया था, उसी तरह से मर्द भी जज्बात का पैकर बन जाए। तो फर्क जो है ना, वो खत्म करने की जो मेहनत है ना, ये शैतान की मेहनत होती है, ठीक है। जबकि रहमान जिसने के तख्लीक किया है, तो उसने तो तख्लीक मुख्तलिफ किया था ना, ठीक है। तो इस बात को समझना चाहिए हमें कि भी जहां पर ना इस फर्क को खत्म होने की कोशिश नजर आ रही हो, तो हम समझ जाया करें इस बात को कि ये रहमान की चाहत के मुताबिक ये काम नहीं हो रहा, बल्कि ये शैतान की चाहत के मुताबिक ये काम हो रहा है। तो बहरहाल हजरत ने औरतों को अलग से मुखातब किया कि भाई उनको अपने वक्त कैसे मैनेज करना चाहिए। तो आगे फरमाते हैं कि हमारी जिंदगी का वक्त महदूद है और कीमती है, हमें चाहिए कि हम उसे बहुत एहतियात से खर्च करें। वक्त महदूद है यानी इसकी लिमिट्स है, इसकी हद है, ये अपनी हद से तजावुज नहीं कर सकता, ठीक है। इंसान अपने गुनाहों में तो हद से तजावुज कर सकता है, ठीक है, लेकिन वक्त जो है ना वो अपनी हद से तजावुज नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे सीधी सी बात है, सादा सी बात है कि 24 घंटा एक दिन के अंदर होता है ना, तो दिन जो है वो 24 घंटे से तजावुज करके 25 घंटे का नहीं हो सकता, हत्ता के 24.5 24.5 घंटे का भी वक्त नहीं हो सकता। 24.5 तो क्या, 24 घंटे के ऊपर 1 मिनट या 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। वही 24 घंटे का ही दिन रहेगा, और इसी तरीके से हफ्ता भी जो है वो 7 दिन का रहेगा, और साल जो है वो 365 दिन का रहेगा, इससे आगे पीछे नहीं हो सकता। तो वक्त महदूद है, तो जो चीज महदूद होती है तो वो चीज फिर कीमती भी होती है ना। कोई चीज आपके पास बहुत ज्यादा वाफिर मिकदार में आ जाए और आप जो है वो यानी उसको संभाल भी ना पा रहे हो, इतना ज्यादा आपके पास आ जाए तो उसकी कदर भी कम हो जाती है, राइट। लेकिन कोई चीज आपके पास बहुत ही लिमिटेड हो, और तो फिर उसकी इंसान को कदर भी जरा आ ही जाती है, अकलमंद इंसान से कदर कर ही लेता है। तो वक्त की जो नेमत है, ये एक एक बहुत ही यानी बल्कि बहुत से तो ज्यादा बढ़कर के हमें कहना चाहिए कि ये सबसे अहम नेमत है। अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में नेमतें दे करके भेजा है ना, पैदाइशी तौर पर हम नेमतें लेकर के इस दुनिया में आते हैं। जैसे आंखें हम लेकर के पैदा हुए हैं, पैदा होने के बाद हमने आंखें कहीं दुकान से जाके नहीं खरीदी, राइट, या मेहनत करके अपने आंखें नहीं बनाई, कान नहीं बनाए, हाथ पैर नहीं बनाए, ठीक है, ये हम लेके पैदा हुए हैं ना, ठीक है, यानी अल्लाह ताला ने हमें दे के इस दुनिया में भेजा है। उसी तरीके से जो जिंदगी अल्लाह ताला ने हमें दे के इस दुनिया में भेजा है ना, तो ये भी हमने कोई यहाँ पे आने के बाद हासिल नहीं करी है, ठीक है। तो ये सारी की सारी नेमतें कहलाती हैं। तो वक्त जो है वो सबसे अहम नेमत क्यों है, क्योंकि इस दुनिया में हमें जिस मकसद से भेजा गया है, तो वो मकसद हम इस वक्त के इस्तेमाल से ही हासिल कर सकते हैं, ठीक है। इस वक्त को इस्तेमाल करके ही हम वो नेमत हासिल कर सकते हैं, हम इस वक्त से बाहर जाकर के वो नेमत हासिल नहीं कर सकते, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप ये कहें कि भाई ये क्या बात हो गई, वक्त से बाहर जाकर के हम नेमत हासिल नहीं कर सकते, तो इसको आप इस तरीके से समझ सकती हैं कि जैसे जो है ना वो आप सफर करना है, आपने कहीं पे सफर करना है, ठीक है। तो अब सफर करने के लिए आप जो है वो पैदल भी सफर कर सकती हैं, तो अपनी टांगों की नेमत को इस्तेमाल करके आप सफर कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास गाड़ी आ जाए, तो आप अपनी टांगों को इस्तेमाल किए बगैर भी सफर कर सकती हैं, बस गाड़ी में जाके बैठ जाए, टांगों को बिल्कुल भी ना हिलाएं, आपका सफर हो जाएगा, ठीक है, तो टांगों की नेमत के बगैर भी आप सफर तय कर सकती हैं, ठीक है, लेकिन ये जो बंदगी की नेमत है, बंदगी की जो जिम्मेदारी है, जो मकसद है बंदगी, आप भाई जैसे आप सफर करना आपका मकसद था, वो आपने टांगों के बगैर भी कर लिया, राइट। तो बंदगी जो हमारा मकसद जिंदगी है, तो क्या वो हम वक्त के बगैर कर सकते हैं? वक्त की नेमत को इस्तेमाल किए बगैर कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप वक्त को इस्तेमाल किए बगैर बंदगी का मकसद हासिल कर लें, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको जो बंदगी करनी है, ठीक है, वो वक्त के अंदर ही करनी है, वक्त को इस्तेमाल करके ही करनी है। क्या मतलब कि आप जो बंदगी कर रही होंगी, तो वक्त जो है ना वो कट रहा होगा, गुजर रहा होगा, ऐसा नहीं होगा कि वक्त रुक जाए और आप किसी और चीज को इस्तेमाल करके बंदगी कर रही हो, किसी और नेमत को इस्तेमाल कर बंदगी कर रही हो, और वक्त की नेमत जो है ना वो इस्तेमाल ना हो रही हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ठीक है, तो वक्त के अंदर ही हमने हमने ईमान लेकर के आना है, ठीक है। ये जो फरमाया ना, इन्नल इंसान लफी खुसर, बेशक इंसान सारे के सारे खसारे में है, तो भाई हम सब खसारे में हैं, तो अब खसारे से निकलने के लिए क्या चीजें बताई अल्लाह ताला ने? इल्लल लजीना आमनु, ईमान लाना, ठीक है, ये सबसे पहला काम है खसारे से निकलने के लिए। फिर उसके बाद अमिनु सालेहात, ठीक है, ये दूसरा काम है खसारे से निकलने के लिए। फिर तीसरा काम तवासव बिल हक, और चौथा काम तवासव बिस सब्र, ठीक है। तो ये चारों के चारों काम जो हैं, ये हम वक्त इस्तेमाल करके ही कर सकते हैं। वक्त को साइड पे रख करके हम किसी और चीज को इस्तेमाल करके हम ये काम नहीं कर सकते, ठीक है, कि बस मैंने इस आंखें इस्तेमाल कर ली, कान इस्तेमाल कर लिए तो मैं ईमान ले आई, वक्त को मैंने इस्तेमाल नहीं किया, नहीं, बल्कि कान आप इस्तेमाल करेंगी सुनने के लिए, अकल अपनी इस्तेमाल करेंगी बात को समझने के लिए, आंखें इस्तेमाल करेंगी पढ़ने के लिए, ठीक है, और फिर आप ईमान लेकर के आएंगी, ठीक है। ईमान लाना का मतलब यही है ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात पर एतमाद करना, तो उसके लिए नबी को पहले जानना भी तो पड़ेगा ना, नबी कौन है, उन्होंने क्या बातें कही जिन पर मुझे एतमाद करना लाजमी है, तब मैं ईमान वाली बनूंगी। तो ये काम आप कैसे करेंगी? कानों से करेंगी, आंखों से करेंगी, अकल से करेंगी, दिमाग से करेंगी, ठीक है, लेकिन क्या वक्त जो है वो इस्तेमाल नहीं हो रहा होगा इसके अंदर? वक्त तो साथ साथ गुजर रहा होगा, यानी आप वक्त को इस्तेमाल कर रही होंगी, तो वक्त को सही इस्तेमाल किए बगैर ईमान भी नहीं लाया जा सकता, ईमान भी वक्त के इस्तेमाल के बगैर नहीं हासिल किया जा सकता, ठीक है। अगरचे कि ये जरा मुश्किल बात है समझने की, शायद पहले कभी हमने इस तरह से सोचा नहीं होगा, लेकिन हकीकत तो यही है, वक्त के इस्तेमाल किए बगैर तो ईमान भी नहीं लेकर के आ सकते। वो तो हम गुमान करके बैठे हुए हैं ना कि हमें कुछ किए बगैर ही ईमान नसीब हो गया है, वो तो हमारा गुमान है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। अगर आप पिछले चंद बयानात और क्लासेस तवज्जो से सुन रही होंगी, तो शायद ये बात समझ में आई होगी आपको कि ये जो हमारा गुमान है ना, ये इसमें हकीकत नहीं है कि हम तो ईमान वाले हैं, ठीक है। तो ईमान वाला बनने के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ सुनना पड़ता है, कुछ देखना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि हाँ भाई एतमाद है इस बात के ऊपर कि नहीं है एतमाद इस बात के ऊपर, तब भी ईमान लेकर के आता है बंदा, वरना हमारी तरह का बस फ्री का ईमान, बगैर कुछ किए हुए ईमान, ठीक है। तो ईमान के लिए भी वक्त की जरूरत, फिर उसके बाद आमाले सालेहा, नमाज पढ़ने के लिए, ये तो एक छोटा बच्चा भी समझ सकता है, इसमें तो कोई मुश्किल काम नहीं है समझना कि भाई नमाज पढ़ने के लिए आपको वक्त चाहिए होता है ना, वक्त के बगैर तो आप नमाज नहीं पढ़ सकते। उसी तरह से नेकी की तलकीन करना, एक दूसरे को वसीयत करना, और एक दूसरे को सब्र की वसीयत करना, ये भी वक्त के अंदर ही हो सकता है। तो अच्छा, ये बात तो कॉमन सेंस वाली बात है, लेकिन कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन, इस वजह से याद दहानी भी करवानी पड़ती है इन सब बातों की। अल्लाह तारा आपकी समझ अता फरमाए, वो अल्लाह का करने का काम है, तौफीक देना अल्लाह का काम है, हमारा काम जो है ना वो अल्लाह ताला ने सिर्फ समझाना लगाया है, तो वो हम कोशिश करते रहते हैं। बाकी दूसरी बात ये कि वक्त की जो नेमत है ना, इसकी कदरदानी करना, ठीक है, इस नेमत की इसकी का शुक्र करना, ठीक है, एक होता है शुक्र करना, शुक्र उमूमी तौर पर उर्दू जुबान में लफ्ज़ शुक्र इस्तेमाल किया जाता है रिएक्शन के तौर पर, कि आपके साथ किसी ने कोई अच्छा काम किया, आपने उसका शुक्रिया अदा कर दिया, ठीक है, तो ये शुक्र का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इस काम के लिए, ठीक है, कोई चीज़ आपको अभी मिली, आपने उसका जवाब शुक्रिया करके दे दिया, ठीक है, और अगर आपने जवाब शुक्रिया करके नहीं दिया तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि आप जो है वो अनग्रेटफुल हो गए, ठीक है, ना शुक्रिया आपने कर दी उस नेमत की जो आपको अभी मिली थी। और एक दूसरा लफ्ज है कदरदानी, ठीक है, कदरदानी का लफ्ज जो है ना वो उमूमी तौर पर इस मानी में इस्तेमाल होता है कि एक नेमत आपको मुस्तकिलन मिली हुई है, कोई अभी नहीं मिल रही है बल्कि मुस्तकिलन आपके साथ है, तो आप उस नेमत को एक्नॉलेज करते हैं, उसको पहचानते हैं कि हाँ ये वाकई ये कितनी बड़ी नेमत है मेरे पास, और फिर उस नेमत का सही इस्तेमाल करते हैं, इसको कदरदानी करना कहते हैं, कदरदानी करना। अल्लाह रब्बुल इज्जत शुक्र का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं कुरान मजीद के अंदर, ला इन शकर तुम ला अजीदन्नकुम, जो मेरी नेमत तुम्हें मिल रही है, ठीक है, तुम उसका शुक्र अदा कर रहे हो कि नहीं, ठीक है, तो वो नेमतें जो है वो हमारे पास पहले से भी होती हैं और मिल भी रही होती हैं, तो उनका हमें रियल टाइम के अंदर शुक्रिया अदा करते रहना, मुस्तकिल शुक्रिया अदा करते रहना, ठीक है। और एक दूसरा लफ्ज, ये दूसरा लफ्ज भी अल्लाह ताला इस्तेमाल करते हैं, कदरदानी का लफ्ज, वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, कि इन्होंने अल्लाह ताला की कदर नहीं करी जैसा कि करनी चाहिए थी, जैसा कि उसके कदर करने का हक था, ठीक है, तो अल्लाह ताला तो हमारे खालिक, वो हमारे लिए सबसे बड़ी नेमत है कि हमारा एक खालिक है, हमारा एक मालिक है, हमारा परवरदिगार है, हमारी सुनने वाला है, क्या हमने उसकी कदर करी, ठीक है, क्या हमने उसकी कदर करी कि जैसा वो है वैसे हमने उसको समझा और वैसे हमने उससे फायदा उठाया, या हमने उसकी कदर नहीं करी, यानी हमने उसको वैसा समझा ही नहीं जैसा कि वो है, बल्कि हमने उसको कोई नाकिस चीज समझ लिया, कोई इनकेपेबल चीज समझ लिया, कोई ऐसी चीज, ऐसी हस्ती समझ लिया जो कि कुछ कर सकती है लेकिन कुछ काम नहीं कर सकती है। जैसे कि बच्चों की क्लास के अंदर आप लोगों ने शायद बात सुनी हो कि शिर्क का एक मफहूम, एक अंदाज शिर्क को देखने का ये भी है कि अल्लाह ताला को नाकिस समझा जाए, कामिल ना समझा जाए, अल्लाह ताला को कामिल ना समझा जाए, अल्लाह ताला को केपेबल ऑफ एवरीथिंग ना समझा जाए, बल्कि इनकेपेबल ऑफ सम थिंग्स और मेनी थिंग्स, इनकेपेबल समझा जाए। तो अब अल्लाह ताला को नाउज बिल्ला जो इनकेपेबल समझता है, तो फिर वो कहता है कि भाई अल्लाह ताला को तो, अल्लाह ताला अकेले तो काम नहीं कर सकता, तो उसको तो मददगारों की जरूरत है, बारिश वाला काम जो है ना वो अल्लाह ताला खुद नहीं कर सकता, वो बारिश का काम किसी और से, कोई और करेगा, राइट, तो ये शिर्क जो है ना वो यही होता है, जब अल्लाह को आपने कामिल नहीं समझा तो फिर आपने अल्लाह ताला के लिए पार्टनर्स बना लिए, ठीक है, मददगार बना लिए, ठीक है, तो ये अल्लाह ताला की नाकदरी है, तो नेमतों की ना फिर नाकदरी एक चीज होती है, एक कॉन्सेप्ट फिर नाकदरी का भी हमें समझ में आया कि भाई ये क्या चीज होती है ना नाकदरी करना। तो इसी तरीके से वक्त की जो नेमत है ये तो हमारे पास मुस्तकिलन है ना, ऐसा तो नहीं है कि अभी मिल रही है फिर उसके बाद खत्म हो गई, मुस्तकिल हमारे पास वक्त है ना, तो इसकी कदरदानी करना जो है ना ये जितना अहम है उतना ही ज्यादा मुश्किल काम भी है, उतना ही ज्यादा मुश्किल काम भी है। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यही कि ये एक ऐसी नेमत है जो कि हमारे पास हर वक्त है और इसकी कदरदानी हमने हर वक्त करनी है, हर वक्त करनी है, हर यानी इसमें भी लफ्ज वक्त का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। तो कोई ऐसा मौका नहीं है कि जिसके अंदर के जो है वो आपके पास ये चीज नहीं है तो आपको थोड़ा सा छुट्टी मिली हुई है कि भाई चलो अभी इसकी कदरदानी नहीं करनी। मिसाल के तौर पर उसको समझने के लिए कि अल्लाह ताला ने आपको माँ बाप की नेमत दी, हम सबको माँ बाप की नेमत दी, ठीक है। तो अब माँ बाप जो है वो हमारे पास कभी होते हैं और कभी नहीं होते हैं, तो जब होते हैं तो उस वक्त ही हम उनकी कदरदानी कर सकते हैं ना, जब वो हमारे पास नहीं होते तो फिर हम कैसे उनकी कदरदानी करें, ठीक है ना। माल ये कभी इंसान के पास होता है, कभी इंसान के पास माल नहीं होता, जब माल होगा तो उस वक्त को वो उसकी कदरदानी करेगा, ठीक है, वो उसके ऊपर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेगा कि मेरे पास माल है, और वो माल को सही तरीके से इस्तेमाल करेगा तो ये माल की कदरदानी हो गई। और जब उसके पास माल नहीं है तो फिर वो माल का शुक्र कैसे अदा करेगा, वो है ही नहीं उसके पास, या वो उसकी कैसे कदरदानी करेगा क्योंकि वो तो है ही नहीं उसके पास, ठीक है ना। इसी तरह बहुत सी ऐसी नेमतें हैं जो कभी हमारे पास होती हैं और कभी हमारे पास नहीं होती हैं, ठीक है ना। अच्छा, हाथ पैर मिसाल के तौर पर ये आपको अल्लाह ताला ने नेमत दी है, हम सबको अल्लाह ताला ने हाथ पैर की नेमत दी है। अब ये हाथ पैर हमारे पास हर वक्त होते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में भी कोई सोचे कि हाँ यार हाथ पैर भी तो हर वक्त होते हैं, तो हाथ पैर की भी तो हर वक्त कदरदानी करने की जरूरत है, ठीक है। लेकिन हाथ पैर की कदरदानी का मतलब क्या होता है कि आप हाथ और पैर को जो है वो अल्लाह की बताई हुई मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करें, ये हाथ और पैर की कदरदानी कहलाएगी, ठीक है। लेकिन क्या आप अपने हाथ पैर को हर वक्त अल्लाह ताला की रजा के कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, हर वक्त तो नहीं इस्तेमाल कर सकते, ठीक है ना। यानी आप क्या करेंगे, हाथ से कोई अल्लाह ताला यानी कोई हाथ से कोई काम करेंगे, हर वक्त कोई ना कोई काम कर रहे हैं हाथ से, ऐसा हर वक्त तो आप नहीं कर सकते ना, राइट। हर वक्त तो आप अपने हाथ का इस्तेमाल नहीं कर सकते कोई अच्छा काम करने के लिए, आपको बिला यानी बहुत से ऐसे मौके होते हैं जिसमें आप अपने हाथ को और पैर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। बैठे हुए फॉर एग्जाम्पल, पैर के लिए तो और भी ज्यादा आसान है, बैठे हुए हैं तो आप पैर को अपने इस्तेमाल नहीं कर सकते, है तो ये आपके पास हर वक्त लेकिन आप उसको हर वक्त इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन वक्त एक ऐसी चीज है कि जिसको हर वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, हर वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस वक्त आप इसको अच्छे काम के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये उसकी नाकदरी कहलाएगी, ये उसकी नाकदरी कहलाएगी, ठीक है। तो अब ये जो वक्त की नेमत है इसको हर वक्त, इसको हमेशा अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना, ये आप सोच सकती हैं कि ये कितना मुश्किल काम, ये कितना मुश्किल काम, ठीक है। यानी गोया के जिसको हम उर्दू मुहावरे में इस तरह से समझ सकते हैं कि वक्त के सही इस्तेमाल की तलवार हमारे सरों पर हर वक्त लटकी रहती है, हर वक्त लटकी रहती है कि क्या जो है वो सही इस्तेमाल कर रहे हो कि नहीं सही इस्तेमाल कर रहे हो। कोई ऐसा लम्हा नहीं आता कि जिसके अंदर इस नेमत को सही इस्तेमाल करने की हमारे ऊपर जिम्मेदारी ना बनती हो, ठीक है। तो अब जो काम मुस्तकिल करने का है तो उसके लिए कितनी मुस्तकिल मिजाजी की जरूरत है, कितनी साबित कदमी की जरूरत है, कितनी कंसिस्टेंसी की जरूरत है, राइट। तो क्या इतनी कंसिस्टेंसी, इतनी साबित कदमी, इतनी मुस्तकिल मिजाजी कोई माई का लाल क्लेम कर सकता है कि हाँ वो इतना साबित कदम है कि हर वक्त जो है अपने वक्त का सही इस्तेमाल कर रहा हूं? नहीं, ये तो तकरीबन नामुमकिन सी बात है। इस वजह से जो कमजोर होते हैं उनसे तो बहुत ज्यादा इसके अंदर कोताही होती है, लेकिन जो बहुत बड़े भी होते हैं ना, बहुत मतलब अजम और हौसले के पैकर भी होते हैं ना, उनसे भी इसके अंदर कहीं ना कहीं भूल चूक हो जाती है, क्योंकि ये मुस्तकिल का काम है ना। ठीक है, तो वक्त की जो अहमियत है वो उम्मीद है कि इन चंद बातों को सुनकर के हमारे जहन में बनेगी कि भाई कितनी बड़ा बोझ है हमारे ऊपर, ये कितनी अजीम चीज है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें जो है ना वो हम सबको जो है वो मेहनत करने की और फिक्र करने की जरूरत है, क्योंकि ये नेमत हम सबके पास मौजूद है, हम सबके पास मौजूद है। कोई आप में से ऐसा नहीं है कि जी उसके पास वक्त की नेमत मौजूद नहीं, इसलिए कि माशाल्लाह सारी जिंदा है ना। कोई आप में से जो है वो अभी इंतकाल शुदा हालत में तो यहाँ पे नहीं बैठी हुई, ठीक है, कोई मियत तो नहीं किसी की बैठी हुई क्लास सुन रही है, सभी जिंदा है ना। तो जो भी जिंदा है उसके पास वक्त की नेमत मौजूद है, और जिसके पास वक्त की नेमत मौजूद है उसके ऊपर इसके सही इस्तेमाल की जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, तो हजरत फिर आगे फरमाते हैं कि वक्त की अहमियत के कुछ शरई दलाइल। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में जमाने की कसम खाई है, मुफस्सरीन ने लिखा कि इससे वक्त की कदर व कीमत का सबूत मिलता है, जैसे कि तफसीर अलवसीत में से ये कोट किया गया है कि वक्त की अहमियत। तो अल्लाह के प्यार हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेमतान मगबूनुन फीहिमा कसीरु मिनन नास, कि दो नेमतें ऐसी हैं कि जिनमें बहुत से लोग धोखा खा जाते हैं, गबन कर जाते हैं। मखबून का लफ्ज किससे निकला? गबन से निकला, और गबन से हम अच्छी तरीके से वाकिफ हैं कि धोखा कर जाना या धोखा खा जाना या जो है वो नुकसान कर जाना। ठीक है, तो गबी का लफ्ज भी इसी से निकला। गबी किसको कहते हैं? गबी ऐसे इंसान को कहते हैं कि जो ना अकल में बहुत ही कम हो, ठीक है, मेंटली रिटार्डेड भी उसको आप अंग्रेजी में कह सकते हैं जबी को। तो मगबूनन जो है ना वो जबी इंसान को कहा जाएगा। तो हजरत नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि दो नेमतें ऐसी हैं, तो उनमें से पहली नेमत कौन सी? असेहतु, और दूसरी वल फराग। एक सेहत और दूसरी फुर्सत, जिसको फरागत भी कहते हैं हम उर्दू जुबान के अंदर, यानी सेहत और फुर्सत का सही इस्तेमाल नहीं करते बल्कि उसकी बेकदरी करते हैं। ये दोनों नेमतें ऐसी हैं जिनमें अक्सर इंसान धोखा खा जाते हैं। तो सेहत के बारे में तो पहले बयान हो चुका, क्योंकि जो पहला बयान था उमूर खानदारी के सिलसिले का तो वो हिफ्जाने सेहत का बयान था, जो कि अभी तक हमने इस वाली क्लास में पढ़ा नहीं है। इंशाल्लाह आइंदा अल्लाह ताला ने मौका दिया तो उसको भी पढ़ लेंगे। तो सेहत के बारे में तो पहले हजरत बयान कर चुके थे, आज वक्त और फुर्सत के बारे में बयान है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इग्तनिम खमसन कबला खमसन, कि पांच चीजों की कदर करो पांच चीजों से पहले, शबाब का कबला हरम का, अपनी जवानी की कदर करो बुढ़ापे से पहले। ठीक है, जवानी की कदर करो बुढ़ापे से पहले। अब जवानी भी जिंदगी ही के एक हिस्से को कहते हैं और बुढ़ापा भी जिंदगी ही के एक हिस्से को कहते हैं। तो इवन जिंदगी के हिस्से होते हैं बचपन, फिर नौजवानी, फिर जवानी, और फिर उसके बाद उधेड़पन, फिर उसके बाद बुढ़ापा। ठीक है, तो जो इंसान अपने शबाब में होता है ना, शबाब का लफ्ज भी इस्तेमाल हो गया कि जब कोई सबसे ज्यादा ताकत और सबसे ज्यादा कुवत के हालत में होता है ना, तो उसको कहते हैं जी ये तो अपने शबाब पर है। ठीक है, तो जवानी का वक्त ऐसा है कि जिसमें इंसान को अल्लाह ताला ने उसकी नेमतें सबसे ज्यादा दी हुई होती है ना, तो उसकी तुम कदर करो बुढ़ापे से पहले, क्योंकि बुढ़ापे में वो नेमतें अल्लाह ताला फिर वापस लेना शुरू कर देते हैं, और तकरीबन वापस ले चुके होते हैं बहुत सारी नेमतें। ठीक है, तो इन दोनों में भी कंपैरिजन करते हुए जवानी की कदर करो इससे पहले के बुढ़ापा आ जाए। फिर फरमाया व सेहत का कबला सकमे का, और अपनी सेहत की कदर करो अपनी बीमारी से पहले। जब बीमारी आ जाएगी तो तुम उस तरीके से काम कर ही नहीं सकोगे जिस तरीके से तुम सेहत की हालत में कर सकते हो। तो अगर तुम्हारे पास सेहत है ना तो उसकी कदर करो, ठीक है, यानी गनीमत समझो। इग्तनिम का लफ्ज नबी अलैहिस्सलाम सलाम ने फरमाया ना, तो उसको हम उर्दू में गनीमत समझो से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, और उसी का मफहूम जो है वो कदर करने के अल्फाज से भी अदा हो सकता है, कदर करो। तीसरी चीज वह गिना का कबला फकरे का, और अपने माल की यानी अपने गनी होने की कदर करो गुर्बत से पहले, कि तुम्हें अल्लाह ताला ने अगर माल दिया है ना तो उस माल को सही तरीके से इस्तेमाल करो, सही कामों में इस्तेमाल करो, इससे पहले कि वो माल तुमसे वापस ले लिया जाए। क्योंकि फकर फकर जो है वो माल का, जब माल का छिन जाना, इसको फिर फकर कहते हैं। वह फरागा का कबला शोले का, और फुर्सत की कदर करो मशगूली से पहले। तो अब ये अच्छा, और वह हयात का कबला मौत का, और जिंदगी की कदर करो मौत से पहले। क्योंकि मौत, सबको पता है कि मौत जो है उस हालत को कहते हैं कि जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान से उसकी तमाम की तमाम नेमतें वापस ले लेते हैं, ठीक है, सिवाय एक नेमत के। एक नेमत वापस नहीं लेते, वो नेमत होती है जो कि उसने अपनी जिंदगी में कमाई होती है, आमाले सालेहा की नेमत, ईमान और आमाले सालेहा की नेमत जो उसने जिंदगी में कमाई होती है ना, वो अल्लाह ताला उससे छीन नहीं लेते, बल्कि उसको अल्लाह ताला सेव रखते हैं उसके नामे आमाल के अंदर, ठीक है, बल्कि सेव भी खाली नहीं रखते कि भाई जितनी है उतनी ही रखें। अगर उसने सदकाए जारिया वाले काम किए होंगे तो इस नेमत को बढ़ाते रहते हैं, हालांकि बाकी सारी नेमतें उससे वापस ले लेते हैं। सेहत की नेमत वापस ले ली, अब तो वो मर गया। माल की नेमत वापस ले ली, अब तो वो मर गया। जवानी की नेमत वापस ले ली, अब तो वो मर गया, ठीक है। औलाद की नेमत, आंखों की नेमत, कानों की नेमत, हर नेमत वापस ले ली, कुछ भी उसके पास नहीं छोड़ा, लेकिन आमाले सालेहा की नेमत उसे वापस नहीं ली, वो उसी की रहती है, ठीक है। लेकिन आमाले सालेहा उसने इन तरीकों से कमाए होते हैं ना, अपनी जवानी की जो ताकतें होती हैं उसको इस्तेमाल करके उसने आमाले सालेहा ज्यादा किए होते हैं, ठीक है। सेहत की नेमत को इस्तेमाल करते हुए उसने अमाले सालेह किए होते हैं, गिना की नेमत को इस्तेमाल करते हुए उसने अमाले सालेह किए होते हैं, और फरागत फराग यानी फरागत की नेमत को इस्तेमाल करते हुए उसने अमाले सालेह किए होते हैं। तो अल्लाह ताला उसकी कैसी कैसी कदरदानी करते हैं कि ये उससे कभी भी वापस नहीं रहते, बल्कि ये उसके साथ जाते हैं और जन्नत में जा करके उसको इसके बदले में जन्नत की नेमतें अता फरमा देते हैं। तो किसी आदमी को अल्लाह रब्बुल इज्जत फुर्सत का वक्त अता फरमाए तो ये अल्लाह ताला की नेमतों में से एक बड़ी नेमत, ठीक है। अगर बहुत मशगूली होती है ना तो इंसान चाहता रहता है कि मैं नेक अमाल करूं, मैं कोई अच्छी किताब पढ़ लूं, मैं कुरान मजीद की तिलावत कर लूं, मैं दीन का इल्म हासिल कर लूं, मैं जो हूं वो किसी की मदद कर लूं, लेकिन वो नहीं कर पाता क्योंकि वो मसरूफ है। आप सब जो माशाल्लाह घरों का इंतजाम करती हैं, बच्चों की जो है वो देखभाल करती हैं, और जो है वो घर के दूसरे अफराद की जो है वो खिदमत करती हैं, तो अच्छी तरीके से सबको अंदाजा है कि इतनी मसरूफियत के अंदर हम बहुत सारे अच्छे काम हैं जो कि नहीं कर पा रहे होते हैं, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कितनी सोने की स्याही से लिखने वाली बात बताई कि इन पांच चीजों की कदर कर लो इससे पहले कि वो तुमसे वापस ले ली जाए। तो वक्त की अहमियत और अकली दलाइल इसके ऊपर, पहले तो शरी दलाइल यानी कुरान मजीद से वल असर की आयत को पेश करते हुए, और फिर जो है वो नबी अलैहिस्सलाम की दो हदीसें पेश करके नबी हजरत जी ने शरी दलाइल बयान फरमा दिए। फिर उसके बाद अकली दलाइल, तो पहली दलील ये है कि हर इंसान के पास जिंदगी का लिमिटेड महदूद वक्त है, है, तो इसके बारे में पिछली बात हो चुकी है, महदूद का जिक्र हो चुका है। और दूसरी ये कि टाइम कैन नॉट बी स्टोर्ड, इफ इट इज अनयूज्ड इट इज लॉस्ट फॉर एवर। कि वक्त को बचाया नहीं जा सकता, स्टोर नहीं किया जा सकता, कि बाद में इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है, अगर उसको इस्तेमाल किए बगैर गुजार देंगे तो ये हमेशा के लिए जाया हो जाएगा। आगे भी बयान में भी आ रहा है तो वहां पर भी जाके पढ़ेंगे, लेकिन अभी भी बस इसको हल्का सा टच कर लें कि वक्त की मिसाल जो है वो फिर बर्फ की जैसी दी जाती है। कि अगर आप बर्फ को फ्रीजर में से बाहर निकाल लें, फ्रीजर में तो बर्फ नहीं पिघल रही होती, लेकिन फ्रीजर से बाहर तो फिर मामला ये होता है ना कि या तो अब आप बर्फ को किसी चीज को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल कर लें, और अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसने पिघल जाना है, खत्म हो जाना, उसको आप स्टोर नहीं कर सकते। तो यही मिसाल जो है वो हमारे जिंदगी या हमारे वक्त की है कि इसको आप स्टोर नहीं कर सकते, इस्तेमाल ही कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी के वक्त को सोच समझ कर गुजारें। तो वो मशहूर शेर भी है ना कि हो रही है उम्र मिसले बर्फ कम, हो रही है उम्र मिसले बर्फ कम, धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता दम बदम। इसका अगला मिसरा भी है ना बड़ा खतरनाक, कि एक दिन मरना है आखिर मौत, कर ले जो करना है आखिर मौत। तो फरमाते हैं कि जिस तरह एक बखील आदमी पैसे की कमी की वजह से एक एक पैसे को सोच समझ कर इस्तेमाल करता है, हम भी जिंदगी के औकात को सोच समझ कर इस्तेमाल करें। तारीख की कामिल तरीन शख्सियत कौन थी जिसने वक्त का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल किया, ठीक है, सबसे कंसिस्टेंटली, सबसे ज्यादा मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपने वक्त को सही इस्तेमाल किया, वही कामिल तरीन शख्सियत बन गई। और वो कौन थे? अल्लाह के महबूब नबी अलैहिस्सलाम। तो फरमाते हैं कि तारीख इंसानियत में जितने लोग भी दुनिया में आए, अगर उनकी जिंदगियों पर गौर करें तो उनकी जिंदगियां अधूरी नजर आएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वक्त का गलत इस्तेमाल या इस्तेमाल नहीं करना उनकी जिंदगियों में मौजूद आप पाएंगे, ठीक है। तो इसी वजह से उनकी जिंदगियां अधूरी कहलाती हैं। मिसाल के तौर पर बड़े बड़े बादशाह गुजरे, लेकिन जब वो मरे तो लोगों ने कहा कि उन्होंने अवाम के लिए बहुत कुछ किया, और भी करना चाहते थे, मगर जिंदगी ने वफा ना की, यानी जिंदगी उनकी अधूरी रह गई। बड़े बड़े जर्नैल आए, दुनिया को फतह किया, मरने के बाद लोगों ने कहा कि उन्होंने अपनी फतूहात के झंडे गाड़ दिए, उनके इरादे और भी काम करने के थे, मगर वक्त ने इजाजत ना दी और ये दुनिया से चले गए, यानी उनकी भी जिंदगी अधूरी थी। बड़े 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 मुसन्निफीन आए, उन्होंने बड़ी बड़ी किताबें लिखी, मरने के बाद उनके हालात जिंदगी में लिखा गया कि इनका इरादा और उनवानात पर भी लिखने का था, मगर वक्त ने इजाजत ना दी, यानी उनकी भी जिंदगी अधूरी थी। आप जिस बंदे की जिंदगी को देखें आपको अधूरी नजर आएगी, नामुकम्मल नजर आएगी। तारीख इंसानियत में एक जिंदगी ऐसी है कि जो 100% कामयाब और 100% मुकम्मल जिंदगी है, और वो है हमारे आका और सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी। चुनाचे आपने हज्जतुल विदा के मौके पर रात के अंधेरे में नहीं, दिन की रोशनी में, जंगल के वीराने में नहीं, बल्कि 1,25,000 लोगों के मजमे में ये पूछा कि ऐ लोगों, मैं जिस मकसद को दुनिया में लेकर आया था, क्या मैंने उस मकसद को पूरा कर दिया? और लोगों ने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नशहदु, हम शहादत देते हैं, अन्नका कद बल्लगता, कि बेशक आपने पहुंचा दिया, वह अदैता और आपने अदा कर दिया, वह नसहता और आपने खैर ख्वाही कर दी, कि हम गवाही देते हैं कि आपने अमानत को पहुंचा दिया और अदा कर दिया और नसीहत कर दी। और नबी अलैहिस्सलाम ने उंगली उठाकर कहा, अल्लाहुम्मा, ओ अल्लाह, अशहद, कि आप इस बात पर गवाह रहिएगा। कि वाकई मैंने ये काम कर दिया और ये लोग मेरे इस काम की तस्दीक कर रहे हैं कि मैंने इन तक पूरी की पूरी बात जो है ना वो पहुंचा दी। अल्लाहुम्मा अशहद, ए अल्लाह आप इस बात पर गवाह रहिएगा। यानी सिर्फ इंसानों को जो है वो गवाह नहीं बनाया अपने अमल का, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को भी गवाह बनाया कि अल्लाह आप भी। अब इंसानों को तो हर चीज नहीं पता होती है ना, वो तो नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी का एक एक गोशा नहीं देख रहे थे, ठीक है, तो वो तो अपने अच्छे गुमान, अपनी मोहब्बत, अपनी अकीदत की बुनियाद पर ऐसी बात कह सकते थे कि आपने काम कर दिया, आपने बात पहुंचा दी, आपने नसीहत कर ली। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत तो एक एक लम्हे का शाहिद होता है ना, तो नबी अलैहिस्सलाम का कैसा मामला था कि सिर्फ बंदों से गवाही नहीं ली बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ भी बिल्कुल 100% एतमाद था कि मेरी जिंदगी में कोई ऐसी बात नहीं हुई कि जो लोगों को तो पता नहीं थी कि मैंने गलत किया, लेकिन अल्लाह ताला को भी, तो अल्लाह ताला को तो सब कुछ पता है ना, ठीक है, तो अल्लाह को गवाह बनाया अपने ऊपर ना, वो कैसी पाकीज़ा और मुकम्मल जिंदगी होगी। गोया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी वो जिंदगी है जो कामिल जिंदगी है, ये नहीं कि मकसद हासिल नहीं हुआ, जिस मकसद के लिए आए थे अल्लाह ने उस मकसद को पूरा करवा दिया और पूरा करने की तौफीक अता फरमा दी। तो तारीख इंसानियत में कामिल और मुकम्मल जिंदगी फकत नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी है। तो आइए हम भी इसी जिंदगी से रोशनी हासिल करें कि हमें अपनी जिंदगी किस तरह से गुजारनी चाहिए। तो ऐसी पूरी तारीख इंसानियत के अंदर ऐसी कोई एक हस्ती नहीं मिलती कि जिसने इतनी बड़ी तादाद में इंसानों के सामने जो है ना वो अपने आप को पेश किया और उन सबको जज बना करके उन सब से पॉजिटिव फीडबैक लिया, सबसे जो है ना वो 10 out of 10 नंबर्स लिए, 100 out of 100 नंबर्स लिए, 100%, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कैसी जिंदगी गुजारी होगी कि एक लम्हा भी जो है ना वो फालतू में सर्व नहीं किया या गलत तरीके से सर्व नहीं किया। तो अब ये मॉडल है हमारे सामने ना, अल्लाह ताला ने भी हमारे सामने ऐसा मॉडल बनाया ना, बेहतरीन मॉडल। लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाही उसवतुन हसना। अब हमारे लिए क्या है कि हम बस जान लगा दें, कोशिश कर लें जितनी कर सकते हैं आगे बढ़ने की, कोशिश करने के वक्त जो है वो अच्छे से अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर लें, यही मकसद इस पूरे बयान का भी है। तो नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी में वक्त की तकसीम कैसे थी? फरमाते हैं कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्त की बहुत कदर फरमाते थे और अपनी जिंदगी के तमाम उमूर को बाकायदा शेड्यूल के तहत, स्केड्यूल उर्दू में उसको शेड्यूल लिखते हैं, के तहत सर अंजाम देते थे। तो अब नबी अलैहिस्सलाम के जो अहवाल जिंदगी हम तक पहुंचे हैं हदीसों की शक्ल में, तो उनमें से फिर उलमाए कराम जो हैं वो इशारे लेकर के इस तरह की बातें करते हैं, ठीक है, कि जैसे यहाँ पे क्या ना कि भाई योमिया भी तरतीब थी और जो है वो हफ्तावार बुनियादों पर भी औकात की तकसीम थी। तो अब ये कैसे हमें पता चला? तो ऐसी हदीसें मिली कि जिनसे इस तरफ इशारा मिलता है, जो इस तरह पॉइंट करती हैं कि भाई देखो तरतीब थी नबी अलैहिस्सलाम जिंदगी। फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वक्त को तकसीम किया हुआ था डेली बेसिस पर, रोजाना की बुनियाद पर भी और वीकली बेसिस पर भी, हफ्तावार बुनियाद पर भी। वो कैसे? तो रोजाना के स्केड्यूल निजामुल औकात को 5 नमाजों में तकसीम किया हुआ था, 5 नमाजों में तकसीम, ठीक है। यानी एक तो ये कि भाई जाहिर है हर चीज तो अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह की मर्जी से होती है ना, ठीक है, तो वो तो फिर तकदीर कहलाती है ना, जो कि अल्लाह ताला ने ऐसे काम किया। तो तकदीर तो ये थी कि अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर 5 नमाजें फर्ज की, ठीक है, लेकिन क्या नबी अलैहिस्सलाम ने अदा भी करी? अगर नहीं अदा की तो भाई फिर अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक आपने अमल नहीं किया, तो इसका मतलब यह है कि आपने गलत काम किया। नबी अलैहिस्सलाम ने ना सिर्फ खुद अदा फरमाई बल्कि अदा करवाई भी, ना सिर्फ खुद करी बल्कि करवाई भी, और पूरा का पूरा मुआशरा जो नबी अलैहिस्सलाम के गिर्द एक इस्लामी मुसलमान मुआशरा कायम हुआ, ठीक है, तो वो पूरा का पूरा मुआशरा जो है वो अपने हर दिन को 5 नमाजों के अराउंड तरतीब देने वाला बना। ठीक है, यानी मुसलमान मुआशरे का जो दिन होता है वो नमाजों के गिर्द घूमता है, गोया गोया कि नमाजें जो है ना वो उस दिन को टाइम कर रही होती हैं, उस दिन को ड्राइव कर रही होती हैं। सबसे अहम ड्राइविंग जो जो एलिमेंट होता है एक मुसलमान मुआशरे के की जिंदगी के अंदर, वो दिन की 5 नमाजें होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ना फिर कहा, बिल्कुल 100% ये बात कही जा सकती है कि रोजाना के स्केड्यूल को 5 नमाजों में तकसीम किया हुआ था। एक मकसद क्या होता है इसका, ये बात कहने का, इसलिए कि आमतौर पर सोचे ना हमें समझ में नहीं आती क्या मतलब क्या कह रहे हैं कि 5 नमाजों में जो है वो दिन को तकसीम किया हुआ था। मकसद इसको, यानी इस बात को समझने के लिए वही वाला उसूल अगर हम इस्तेमाल में लाए ना, जिससे कि हमें बहुत सारी बातें जो कि सीधी तरीके से समझ में नहीं आती वो समझ में आ जाती हैं। अल अशियाउ तोरफू बे अफदादिहा, कि जो चीजें सीधी तरीके से समझनी मुश्किल होती है ना, तो वो अपनी जिद को देखने से समझ में आ जाती हैं। ठीक है, तो अब ये बात कि भाई 5 नमाजें जो हैं वो दिन को कामों में तकसीम करना, ये 5 नमाजों की शक्ल में, तो इसको समझने के लिए अगर आप इसकी जिद को देखें कि जिसकी नमाज में, जिसकी जिंदगी में 5 नमाजें नहीं है, जिस मुआशरे में नमाजों का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, तो अब उस मुआशरे के अंदर क्या होगा कि भाई जिस वक्त, यानी कोई स्केड्यूल नहीं है, बस जिस वक्त जो है वो रैंडमली कोई 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 काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, या एक ही बंदा जो है वो सुबह के वक्त एक दिन कोई काम कर रहा होता है, अगले दिन जो है वो कोई और काम कर रहा होता है, और तीसरे दिन कोई और काम कर रहा होता है, और चौथे दिन फिर कोई और काम, यानी रैंडमली जिंदगी गुजर रही है, जो चीज बस सामने आ गई बस वही करनी शुरू कर दी। ठीक है ना, कोई तरतीब नहीं है, कोई प्री डिटरमिन जो है ना वो आपका स्केड्यूल नहीं है, बल्कि बस रैंडमली आप कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, अगले दिन कभी कोई और काम कर रहे हैं, कभी कोई और काम कर रहे हैं, कभी कोई और काम कर रहे हैं, फिर तीसरा दिन आएगा फिर आप कोई और काम करना शुरू कर देंगे। तो ये जो है ना बेतरतीब जिंदगी कहलाती है, आपका दिल का कोई स्केड्यूल नहीं है। लेकिन जिसकी जिंदगी में नमाजें हैं, तो उसने सुबह उठते के साथ ही जो है वो फजर की नमाज पढ़नी है। ठीक है, तो उसने ये टाइम जो है ना गोया के पूरे फजर के प्रोसेस के अंदर कम से कम आधा घंटा तो लगता है ना, क्योंकि बाथरूम भी जाना होता है, ठीक है, वुजू भी करना होता है, और फिर उसके बाद जो है वो घर में है तो घर में नमाज अदा करनी होती है, और मस्जिद जाना है तो मस्जिद जाने के अंदर वक्त लगता है, तो ओवरऑल जो है ना वो आधा घंटा आपका फिक्स्ड है, एक सर्टन पीरियड ऑफ द डे के अंदर ये आपने प्रोसेस करना है, ये काम आप किसी और टाइम पे नहीं कर सकते। जोहर के वक्त में फजर की नमाज नहीं पढ़ सकते, ठीक है, इशराक के वक्त में जो है फजर की नमाज नहीं पढ़ सकते, आपने फजर के वक्त में फजर की नमाज पढ़नी है, तो ये तरतीब कहलाएगी। फिर उसके बाद एक बीच में एक काम काम का वक्त आ गया, फिर उसके बाद जोहर का वक्त आ गया, तो अब जोहर का जो जो पूरा का पूरा काम है वो आपने उसी एक टाइम के अंदर करना है। ठीक है, उसमें इतनी रिलैक्सेशन है कि शुरू वक्त से लेकर के आखिर वक्त तक ये अल्लाह ताला ने हमारी कमजोरी को देखते हुए एक लॉन्गर पीरियड जरूर दे दिया है। ठीक है, कि जवाल का वक्त जब खत्म होता है उस वक्त से लेकर के असर का वक्त शुरू होने से पहले पहले तक ये एक लॉन्गर लेंथ ऑफ टाइम तो आपको दे दिया है, लेकिन वो हमारी कमजोरी और उसकी वजह से दिया है ना, लेकिन जोहर उसके अंदर ही अदा करनी है। ये नहीं हो सकता कि आप सूरज गुरूब होने के बाद जोहर अदा कर लें, ठीक है, तो इसी को तरतीब देना कहते हैं ना। तो रोजाने के स्केड्यूल को 5 नमाजों में तकसीम किया हुआ था, जो काम करना होता था उसे एक नमाज से दूसरी नमाज के दरमियान किया जाता था, तो ये डेली स्केड्यूलिंग हो गई। और फिर हफ्तावार किस तरीके से, कि हफ्तावार इस तरह कि आप सोमवार का दिन जो कि पीर का दिन कहलाता है, या दुशंबा का दिन भी कहलाता है, या मंडे का दिन कहलाता है, तो सोमवार को और सोमवार और मंगल का रोजा रखते थे, और बुध के दिन मंगल तो नहीं है यहाँ पे, गलत टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। जुमेरात ना, पीर और जुमेरात का रोजा रखते थे, और बुध के दिन मदीना मुनव्वरा की औरतों के लिए आप बयान फरमाते थे। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाई। हमारा भी जो है ये क्लास हो रही होती है खवातीन में, ये बुध के दिन ही हो रही होती है। ठीक है, तो बुध के दिन जो है ना वो मदीना मुनव्वरा की औरतों के लिए आप बयान फरमाते थे। उम्महातुल मोमिनीन को पढ़ाने के लिए जो खवातीन आती थी वो सोमवार के दिन आया करती थी, मंडे के दिन। यानी उम्महातुल मोमिनीन की भी तालीम का सिलसिला नबी अलैहिस्सलाम ने तय किया हुआ था। तो गोया पूरे हफ्ते की एक तकसीम थी जिस पर जिंदगी गुजर रही थी। ठीक है, यानी बाकायदा दिन तय किए हुए थे ना, रैंडमली नहीं हो रहा होता था कि भाई कभी कर लिया कभी नहीं किया, कभी कर लिया कभी नहीं किया, कभी कुछ और कर लिया। इसको रैंडम कहते हैं, ठीक है, बेतरतीबी कहते हैं। तो आप सल ने इस तरीके से हफ्ते को भी पूरा तकसीम किया हुआ था। और जुम्मे का तो आपको मालूम ही है कि जुम्मे का दिन जो है वो तो बाकायदा हर हफ्ता एक छोटी ईद होती है जिसके अंदर जुम्मे की नमाज पढ़ी जा रही होती है। तो उस तरह की जो एक बड़ी गैदरिंग होती है तो वो खास जुम्मे के दिन, ये नहीं है कि किसी हफ्ते में जो है ना वो जुमेरात के दिन बड़ी गैदरिंग हो रही है, किसी हफ्ते में जो है वो जुमे के दिन बड़ी गैदरिंग हो रही है, और कभी जो है वो पीर के दिन बड़ी गैदरिंग हो रही है, कभी जो है वो गैदरिंग नहीं हो रही। ऐसा नहीं होता था, बल्कि ये जो मुसलमान मर्दों का जो मस्जिद में आकर के या नमाज की जगह पर जो इज्तिमा होता था वो सिर्फ जुम्मे को हुआ करता था, इसी को तरतीब कहते हैं। ठीक है, तो रात के औकात की भी तकसीम थी कि फिर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कामों का एक स्केड्यूल निजामुल औकात बना लेते थे, दिन का अलग रात का अलग। आपकी रात को देखें तो आपकी रात तीन हिस्सों में तकसीम होती थी। एक हिस्सा फैमिली टाइम, अहलो आयाल का वक्त, ठीक है, वो क्या वक्त होता था कि जिसमें कि नबी अलैहिस्सलाम घर वालों के साथ खाना खाया करते थे, ठीक है, और घर वालों के साथ वक्त गुजारा करते थे, बातचीत किया करते थे। ठीक है, तो ये फैमिली टाइम होगा, ये रात का सबसे पहला हिस्सा होता था। ठीक है, इसमें हम पीछे भी स्लीप मैनेजमेंट के बयानात के अंदर भी ये बातें कर चुके हैं कि उस जमाने में नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा का जो जमाना था ना, खैरुल कुरून, तो इसमें खाना जो है वो रात का वो या तो मगरिब से पहले खा लिया जाता था, ठीक है, या वो मगरिब के बाद खा लिया जाता था, इशा से पहले, तो मगरिब और इशा के दरमियान खाना। ठीक है, और किस कब जो है वो पहले खाया जाता था, कब बाद में खाया जाता था, तो वो बड़ा आसान है इस बात को समझना कि भाई जो सर्दी की रातें होती हैं तो वो बहुत लंबी रातें होती हैं। ठीक है, तो बहुत जल्दी रात, बहुत जल्दी मगरिब का टाइम हो जाता है ना, तो मगरिब से पहले खाना फिर वो बहुत जल्दी खाना हो जाएगा। तो यानी बात समझ में आती है, और शायद कहीं दलील भी मिल जाए, लिखी शक्ल में भी शायद मिल जाए, लेकिन अकल की बात है, कॉमन सेंस की बात है कि रात विंटर्स के अंदर मगरिब के बाद खाना होता था, और जो समर्स होते हैं तो उसके अंदर चूंकि मगरिब ही इतनी देर में होती है तो इस वजह से मगरिब से पहले खाना खा के फारिग हो गए। तो ये जो है ना फिर इशा तक का वक्त जो है गोया के ये फैमिली टाइम हो गया है। फिर इशा के बाद हमने हदीस भी आपके सामने पढ़ करके भी सुनाई, बात भी उसके ऊपर बहुत करी, वो जो हजरत अबू दरदा और उम्मे दरदा रज़ी अल्लाह अन्हुम वाली हदीस जिसमें हजरत सलमान फारसी रतान का भी अमल मौजूद था, तो वो क्या था कि इशा के बाद वो खड़े हो रहे हैं नफिल पढ़ने के लिए, उन्होंने फरमाया नहीं सो जाओ अबू हजरत सलमान फारसी रतान। ठीक है, तो इशा के बाद सोने का वक्त था, और तीसरा हिस्सा अल्लाह की इबादत यानी तहज्जुद के लिए था, ठीक है, जो कि फजर से पहले का वक्त होता है। तो ये रात की तकसीम हो गई। फिर दिन के औकात की तकसीम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर के बाद सहाबा कराम के साथ मजलिस फरमाया करते थे, तो ये मजलिस भी जो है ना ये भी तय थी फजर के बाद की मजलिस। और जो सहाबियात थी घर के अंदर, तो अहादीस से पता चलता है कि सहाबियात जो है वो मुसल्ले के ऊपर बैठ करके जिक्र कर रही होती थी। ठीक है, जैसे हजरत जुवैरिया रजी अल्लाह की वो मशहूर हदीस है कि जिसके जरिए से उम्मत को ये अजीम तस्बीह मिली है, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा का नफ्सी व ज़िनत अरशी व मिदाद कलिमाती। ठीक है, तो ये क्या है कि नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद तशरीफ ले गए फजर के लिए, और जो है वहां पर सहाबा कराम के साथ जो मजलिस थी वो सब कुछ करके, इशराक की नफलें पढ़ के फिर घर वापस आ रहे हैं, और जुवैरिया रज़ी अल्लाह अन्हा जो है वो मुसल्ले पे बैठी हुई जिक्र कर रही है। तो इससे क्या पता चलता है कि सहाबियात जो है वो भी घर के अंदर अपनी अल्लाह के साथ मजलिस कर रही होती थी, ठीक है, क्योंकि जो अल्लाह ताला का जिक्र करता है वो अल्लाह ताला का हम जलीस होता है, तो गोया कि उसकी अल्लाह के साथ मजलिस हो रही होती है, ठीक है। और नबी अलैहिस्सलाम यहाँ पर सहाबा के साथ अल्लाह ताला का जिक्र कर रहे होते थे, तो गोया कि नबी अलैहिस्सलाम इज्तिमाई अल्लाह ताला के साथ मजलिस कर रहे होते थे, और सहाबियात जो है वो इनफिरादी अल्लाह ताला के साथ मजलिस कर रही होती थी इस टाइम पर फजर के बाद, और उनके साथ बैठ करके नबी अलैहिस्सलाम फिर हालात पर गुफ्तगू भी फरमाते थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दोपहर को खाना खाते थे तो उसके बाद थोड़ी देर के लिए कैलूला फरमाते थे। ये कैलूला भी इंसानी जिंदगी की तकमील में बहुत फायदेमंद चीज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिन के वक्त को 3 हिस्सों में तकसीम किया हुआ था। कुदरतन कल ही आप में से आई हुई थी कोई अपने हस्बैंड के साथ, तो उनके साथ यही बातें हो रही थी कि भाई कैलूला की सुन्नत है, लेकिन आज के दौर में हम कम से कम जो मर्द हजरात हैं जो बाहर काम करने के लिए दफ्तरों को जाते हैं और फैक्ट्रीज में जाते हैं, और वो कैलूला की सुन्नत से महरूम है, ठीक है ना। अगरचे के सुन्नत आफाकी है, लेकिन आज के मर्द जो है वो उस सुन्नत से महरूम है, क्योंकि वो नहीं कर सकता कैलूला, दफ्तर के अंदर कैलूला करने की कोई जगह नहीं होती। हाँ, जापान में तो सुना है कि होती है, लेकिन पाकिस्तान में और सऊदी अरब में तो नहीं होती, और कहीं और भी नहीं होती, ठीक है। तो हम उन हालात में इस वक्त जिंदा नहीं है कि जिन हालात के अंदर जो है ना वो हम वाकई सुन्नतों पर अमल कर सकें, सारी सुन्नतों पर, बहुत सारी सुन्नतों पे अल्हम्दुलिल्लाह कर भी सकते हैं, लेकिन बहुत सारी सुन्नतों पे अमल नहीं भी कर सकते। तो हम बहुत ही यानी स्पेशल हालात के अंदर जिंदा है ना, ठीक है। तो कम से कम दिल के अंदर कसक होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए और शौक होना चाहिए सिर्फ सुन्नतों के ऊपर अमल करने का, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो अल्लाह ताला से उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला दिल के शौक को देखते हुए हमें सुन्नतों पे अमल का सवाब अता फरमा दे, ठीक है। ये शौक खत्म हरगिज हरगिज नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन हकीकत को समझना भी चाहिए कि भाई हम किस किस्म के हालात में जिंदा है ना, ठीक है। तो गलतफहमी और धोखे में नहीं रहना चाहिए कि हालात तो दीन के खिलाफ हैं जिनके अंदर हम जिंदा हैं, और अपने आप को गोया के धोखा दे के रखा हुआ है कि नहीं, बहुत जबरदस्त हालात हैं, बहुत अच्छे हालात हैं, बहुत ही जबरदस्त खैरुल कुरून में हम जिंदा हैं, दीन की हवाएं चल गई हैं, सब कुछ ठीक हो गया है, सब ठीक है, सब सेट है, सब मजे में है, सब जो है वो दुनिया के अंदर ही जन्नत की जिंदगी गुजार रहे हैं, ये खामा खा के उल्टे सीधे धोखों में मुब्तला नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों बातें अहम हैं, एक तो ये कि सुन्नत पे अमल करने की कोशिश होनी चाहिए लेकिन नहीं कर पा रहे हैं तो दिल में शौक होना चाहिए, ठीक है, और दूसरी अहम बात क्या कि धोखे की जिंदगी में नहीं रहना चाहिए बल्कि हकीकत शनासी को इख्तियार करना चाहिए, ठीक है। तो कैलूरा जो है ये भी इंसान की जिंदगी की तकमील में बहुत फायदेमंद है, और जाहिर है हम यानी नाकस जिंदगियां गुजार रहे हैं क्योंकि कैलूले की सुन्नत से भी महरूम है, और भी बहुत सारी सुन्नतों से महरूम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिन के वक्त को 3 हिस्सों में तकसीम किया हुआ था। एक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम की स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, रूहानी तरक्की करते थे, यानी उनके साथ रूहानी वाज़ व नसीहत दीन सिखाते थे, नसीहत करते थे। दूसरा, घर वालों के साथ भी वक्त गुजरता था, फैमिली अफेयर्स, घरेलू उमूर के अंदर, ठीक है। तो कितनी सारी अहादीस हैं जिनके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी बीवियों के साथ बातचीत मनकूल है, तो बीवियों के साथ होते थे, और बीवियां जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सड़क पे निकल करके तो नहीं बातें कर रही होती थी, मस्जिद में आकर के तो नहीं बातें कर रही होती थी, मैदान जिहाद में जाकर के तो नहीं बात कर रही होती थी। तो इससे क्या पता चला कि सहाबियात जो है वो घर में रहती थी और घर में नबी अलैहिस्सलाम का वक्त गुजरता था उनके साथ, ठीक है। ऐसा नहीं था कि अल्लाह के नबी हैं तो जिहाद करना है, तो दीन की तबलीग करनी है, तो बस घर ही नहीं आ रहे, ऐसा नहीं होता था, बल्कि घर में रोजाना के हिसाब से नबी अलैहिस्सलाम का वक्त गुजरता था अपनी फैमिली के साथ, ठीक है। और तीसरा, आने वाले लोगों के साथ भी वक्त गुजरता था, उनको दीन सिखाने और सोशल अफेयर्स यानी समाजी उमूर वगैरह में वक्त गुजरता था। तो जो वफूद भी आते थे और उनके लिए नबी अलैहिस्सलाम का एक वक्त था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास जगह पे बैठते थे, वो खुद आते थे, उनके साथ जो मुलाकातें होती थी। वो नबी अलैहिस्सलाम के पड़ोसी नहीं होते थे, वो मदीना मुनव्वरा के मकीन नहीं होते थे, बल्कि बाहर से आए हुए लोग होते थे। ठीक है, तो उनके साथ जो है ना वो एक अलग ट्रीटमेंट का वक्त होता था, लोकल्स के साथ ट्रीटमेंट का अलग वक्त होता था, और अपने घराने वालों के साथ ट्रीटमेंट का अलग वक्त होता था। ठीक है, तो ये हो गई दिन के औकात की तकसीम, बस इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी आइंदा की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे अल्लाह की तौफीक से। किसी को कोई सवाल पूछना हो या कोई तो लिख के बता सकते हैं। ठीक है, वक्त का इस्तेमाल का मौजू जो है ये इस किस्म का एक एक उनवान है जो कि बड़ी उम्र की औरतों के लिए या शादीशुदा खवातीन के लिए भी अहम है, और ये इवन छोटी उम्र की खवातीन जो है माशाल्लाह बच्चियां, ठीक है, ये उनके लिए भी बहुत अहम है। ठीक है, तो इस वजह से हमारी जो छोटी बच्चियों के माशाल्लाह ग्रुप होता है, तो कल हमने उनको भी मैसेज किया कि भी वो भी जो है ना वो इस वाली क्लास को लें। तो आज इंशाल्लाह आई एम श्योर के काफी सारी छोटी बच्चियां भी इस वाली क्लास के अंदर मौजूद होंगी, तो आप भी अगर अपने खानदान में अपने जानने वालों में छोटी उम्र की बच्चियों को भी देखती हैं कि भी वो भी अगर इस टाइम पर फारिग हैं, तो वो भी इस क्लास को ऑनलाइन अटेंड कर सकती हैं, उनको भी इनक्रेज करें, क्योंकि ये उस किस्म की चीजें नहीं है ना कि रिलेशनशिप मैनेजमेंट, तो सास के साथ कैसे मामला करना है, तो शौहर के साथ कैसे मामला करना है, ये तो ऐसी चीज है जो कि हर इंसान के ऊपर अप्लाई होते हैं ना। तो जैसे ही कोई अकल शऊर की उम्र को पहुंच जाता है, जो कि उमूमन बच्चियां जो है वो 9-10 साल की उम्र में या 11-12 साल की उम्र में इस तक पहुंच जाती हैं, तो उसके बाद फिर ये चीजें जो है ना वो उनके लिए एप्लीकेबल होनी शुरू हो जाती हैं। तो इसको खाली बड़ी उम्र के खवातीन की क्लास में समझें, बल्कि छोटी बच्चियां भी जो है वो उसको ले सकती हैं, मतलब 11-12 साल से ऊपर के बच्चे। ठीक है, अल्लाह ताला सबको बात की समझ और फरमाए।